पृष्ठ संख्या 44। गवर्नर जनरल जब संसद सत्र में होते थे तब भी अध्यादेश जारी किया करते थे। उनकी संसद के अलावा विधान निर्माण की स्वतंत्र सत्ता थी। जब संसद सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उनका अपना कानून निर्माण में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। न्यायपालिका के बारे में उन्होंने कहा, हमारी न्यायपालिका न केवल कार्यपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए, अपितु अपने आप में दक्ष और समक्ष होनी चाहिए। दो रास्ते हैं जिससे अन्य देशों में न्यायपालिका शासित होती है। ग्रेट ब्रिटेन में राजा बिना किसी रुकावट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विपरीत पद्धति है। न्यायाधीश और उसके सभी पदाधिकारी सीनेट द्वारा अनुमोदित होने पर नियुक्त किए जाते हैं। हम आज जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, यहाँ अमेरिका की तरह अभी जिम्मेदारी का भाव उस सीमा तक जागृत नहीं हुआ है। इसीलिए यदि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति का जिम्मा केवल राष्ट्रपति पर छोड़ दें तो यह स्थिति खतरनाक साबित हो सकती है। इसे कार्यपालिका या बिना किसी सीमा अथवा बंधन के छोड़ देना उचित नहीं होगा। उसी तरह कार्यपालिका द्वारा हर नियुक्ति का अनुमोदन संसद द्वारा कराना भी उचित नहीं होगा। इससे नियुक्तियां राजनैतिक दबाव में राजनैतिक आधार पर होने लगेंगी, वह भी उचित पद्धति नहीं है। इसीलिए हमने मध्य मार्ग अपनाया है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार नहीं देती, यह संसद के प्रभाव को भी नहीं स्वीकार करती। इस संदर्भ में विभिन्न तत्वों से परामर्श के बाद ही नियुक्ति हो सकेगी। मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता और व्यक्ति के बारे में उनके निर्णय की गंभीरता का योगदान होगा। निश्चित ही मुख्य न्यायाधीश सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति होगा, लेकिन हम लोगों की तरह उसकी भी भावनाएं हैं, उसके भी पूर्व ग्रह हैं। इसीलिए यदि मुख्य न्यायाधीश को ही यह अधिकार दे दिया जाए कि कार्यपालिका की ओर से जो भी नाम प्रस्तावित हो उन्हें वीटो करता रहे तो मामला पेचीदा हो जाएगा और यह स्थिति भी बहुत उत्तम नहीं होगी। यह भी खतरनाक ही होगा। इसीलिए इस प्रावधान को इसी रूप में स्वीकार किया जाए। उन्होंने राज्यपाल के संबंध में कहा, यद्यपि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उसे अपने कृत्य के साथ दायित्व का भी निर्वाह करना होता है। मेरे अनुसार उसके दायित्व दो हिस्से में विभाजित होने चाहिए। वह मंत्रिमंडल को सत्ता में रखे, क्योंकि मंत्रिमंडल उसके प्रसाद पर्यंत रहेगा। उसे देखना है वह कब तक और ऐसे मंत्रिपरिषद को अपने प्रसाद पर आधारित रखे और कब अपनी कृपा का मंत्रिमंडल के विरुद्ध उपयोग करें। दूसरा दायित्व है कि उसे मंत्रिमंडल को सलाह देनी चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए, मंत्रिमंडल को विकल्प बताने चाहिए तथा पुनर्विचार को भी कहना चाहिए। राज्यपाल को यह सब करना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण रूपेण एक अनावश्यक संस्था बनकर रह जाएगा। किसी भी हालत में अच्छा नहीं रहेगा। वह एक दल विशेष का प्रतिनिधि नहीं है, वह राज्य की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है। वह जनता के लिए प्रशासन का प्रतीक है, इसीलिए वह देखे कि प्रशासन शुद्ध है, भ्रष्टाचार मुक्त है, निष्पक्ष है तथा मंत्रिमंडल द्वारा संचालित कार्यक्रम जनभावना के विपरीत नहीं है। एक CAD बुक 3 कॉमा पृष्ठ संख्या 258 कॉमा 24/5/1949। दो वही पृष्ठ संख्या 546, कॉमा 2-6-1949। पृष्ठ संख्या 45। इसीलिए मंत्रिमंडल को परामर्श देना, चेतावनी देना, कार्यक्रमों में बदल का सुझाव देना, इसीलिए उसके समक्ष राज्यों की पूरी सूचना होनी चाहिए। वह राज्यपाल पद का निर्वहन नहीं कर सकता जब तक उसके पास समूचे राज्य की पूरी सूचनाएं न हों। मान लीजिए मंत्रिमंडल कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उससे संबंधित सभी कागजात राज्यपाल के पास तक नहीं है, इसीलिए हम राज्यपाल को ऐसी शक्ति दे कि अपने पूरे दायित्व के निर्वहन के लिए कोई भी सूचना राज्य सरकार से मांग सके, जिससे प्रशासन अच्छी तरह शुद्धता के साथ चलाया जा सके। जैसे केंद्र में होता है, सभी सूचनाएं कैबिनेट पेपर के साथ गवर्नर जनरल तक जाती है। जन समस्याओं से संबंधित सभी मंत्रालयों द्वारा साप्ताहिक विवरण तैयार किया जा सकता है। यह संक्षिप्त विवरण जो कैबिनेट के लिए आता है, वह गवर्नर जनरल को भी जाता है। यदि गवर्नर जनरल सभी कागजाती विवरण से संतुष्ट होता है कि मंत्रालय द्वारा लिया गया कोई निर्णय जो कैबिनेट के संज्ञान में नहीं है और गवर्नर जनरल समझते हैं कि यह गलत निर्णय है, जनहित में नहीं है, तो वे कैबिनेट से कह सकते हैं कि अमुक मंत्री का अमुक निर्णय जनहित में नहीं है, इस पर कैबिनेट पुनर्विचार करे। मैं नहीं समझता कि ऐसी पद्धति अपनाए रहने से नुकसान क्या है। कुछ लोगों को अनावश्यक गलतफहमी है कि ऐसी पद्धति स्वीकार करने से राज्यपाल को इस बात का अधिकार मिल रहा है कि वह दैनंदिन प्रशासकीय मामलों में हस्तक्षेप कर सकेगा। इस तरह की कोई मंशा नहीं है, न तो इस धारा से कोई ऐसा अर्थ निकलता है। सांसदों की एक निश्चित योग्यता के प्रश्न को उन्होंने भावी संसद पर छोड़ दिया। संसद के विशेषाधिकारों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने 3 जून 1949 को संविधान सभा में कहा, संसद के विशेषाधिकार वाणी स्वतंत्रता और गिरफ्तारी से बचाव के क्षेत्र के अलावा भी काफी व्यापक है। यह तो बहुत हद तक जनता के भी खिलाफ है तथा एक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता के भी खिलाफ है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकार हैं कि किसी भी व्यक्ति को सदन की अवमानना करने पर दंडित कर सकता है तथा ऐसे मामलों में अदालत की शक्तियां संसद के पास आ जाती हैं। यह महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है। फिर संसद किसी भी अपने सदस्य के विरुद्ध उस कृत्य को लेकर कार्यवाही कर सकती है जिस कृत्य के कारण संसद की गरिमा गिरी हो। संसद जेल भेज सकती है। संसद की अवमानना करने वाले व्यक्ति को जेल भेजने की संसदीय शक्ति इतनी आसानी से परिभाषित नहीं की जा सकती, न तो इस बात की व्याख्या की जा सकती है कि एक व्यक्ति के कौन कौन से कृत्य हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि इससे संसद की अप्रतिष्ठा हुई है। इस पर पंडित ठाकुरदास भार्गव ने टोका कि हम संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संसद के विशेषाधिकार के बारे में नहीं। इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कौन कौन से कृत्य संसद के विशेषाधिकार हनन क्षेत्र में आते हैं, इसकी व्याख्या करना कठिन काम है। इस पर विस्तृत बहस और विश्लेषण की जरूरत होगी। इसीलिए हम लोग अभी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, किंतु हमें संसद को विशेषाधिकार देने होंगे कि लोग असत्य आलोचनाओं से संसद की अवमानना न करते रहें। हमें यदि इन विशेषाधिकारों को परिभाषित करना पड़ेगा तो इन्हें संविधान में जगह देनी होगी। हमने संसदीय प्रक्रिया पर पुस्तक को सावधानी से पढ़ा है, उसमें 8 या 9 चीज़ों की एक सूची दी गई है जो संसद के विशेषाधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए हम यदि इस पचड़े में पढ़ते हैं तो 20 से 25 पेज संविधान में बढ़ाने होंगे। पृष्ठ संख्या 46। यह संसद के ऊपर छोड़ना ही श्रेयस्कर है कि वह समय और परिस्थिति के अनुसार संसदीय संस्था और सदस्यों के विशेषाधिकार निर्धारित, परिभाषित और विकसित करें। 1935 का एक्ट सदस्यों को कोई विशेषाधिकार नहीं देता है, केवल वाक स्वतंत्रता दी गई है और कहा गया है कि संसद में अपने रखे किसी भी विचार के लिए सदस्यों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। मौजूदा संसद और विधायिका कोई विशेषाधिकार नहीं रखती। सबसे सुरक्षित रास्ता मसविदा समिति ने चुना कि हमारे भी संसद के वही विशेषाधिकार होंगे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। अब इस बात का केवल भावनात्मक आधार पर विरोध होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मसविदा समिति ने 25 पेज बढ़ाने से अच्छा और सुरक्षित मार्ग चुना कि हमारे विशेषाधिकार वही होंगे जो ब्रिटेन में हैं।